डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 7। रहस्योद्घाटन 3। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर डॉक्टर डेव मैथ्यूसन का पाठ्यक्रम है। यह सत्र 7 है, रहस्योद्घाटन के साथ चर्च सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लॉडिसिया। सार्डिस के पत्र के वादे। हमने कहा कि सर्दीस को जीवित होने की प्रतिष्ठा थी, फिर भी वास्तव में वे मर चुके थे। जीवित रहने की उनकी प्रतिष्ठा के बारे में एक और बात कहनी है। नंबर 1, यह केवल उनका मूल्यांकन नहीं रहा होगा, बल्कि शायद क्षेत्र के अन्य चर्चों का मूल्यांकन भी रहा होगा। उनके बीच जीवित होने की प्रतिष्ठा थी। यह भी संभव है कि यीशु के कथन में थोड़ी अतिशयोक्ति हो, यहां तक कि विडंबना भी हो कि आपके पास जीवित होने का नाम या प्रतिष्ठा है, लेकिन आप वास्तव में मर चुके हैं। लेकिन किसी भी मामले में यीशु उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहते हैं, और जो लोग सफल होते हैं, हम पाते हैं कि उन्हें कम से कम दो वादे दिए गए हैं। फिर ये वादे स्पष्ट रूप से पुस्तक के बाकी हिस्सों से लिए गए हैं, विशेष रूप से अध्याय 19 से 22 के अंत में, जो मेरी राय में सभी दर्शाते हैं या संदर्भित करते हैं कि जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर इतिहास को उसके निष्कर्ष पर लाने के लिए आते हैं तो क्या होता है। पहला यह कि अगर वे इस पर काबू पा लेते हैं तो उन्हें सफेद वस्त्र दिए जाएंगे और सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। फिर से यह भाषा शायद वही उठाती है जो हम पाठ में पाते हैं, जैसे कि अध्याय 7 में। अध्याय 7 में हम एक प्रारंभिक प्रकार का रहस्योद्घाटन चक्र पाते हैं, जैसा कि हमने कहा। इसमें 21 और 22 में पूर्ण विवरण से पहले भगवान के लोगों के भविष्य के इनाम की प्रत्याशा है। पहले से ही अध्याय 7 में हम भगवान के लोगों को सिंहासन के सामने विजयी खड़े होने का एक दर्शन देखते हैं, और हम पाते हैं, विशेष रूप से श्लोक 9 में यह कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। तो यहाँ भगवान के लोग इतिहास के अंत में और भगवान की उपस्थिति में विजयी खड़े हैं। वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और हाथों में ताड़ की शाखाएं पकड़े हुए थे। हमें अध्याय 19 में एक समान भाषा मिलती है, और अध्याय 19 में यह वह जगह है जहां अध्याय 18 में बेबीलोन के विनाश के बाद, जिसका वर्णन हम अध्याय 19 की शुरुआत में करेंगे, हम बाद में निपटेंगे। अध्याय 19 में श्लोक 8 में फिर से गौरवशाली संतों, भगवान के लोगों का संदर्भ दिया गया है जो अब भगवान की उपस्थिति में विजयी हैं। पद 8 कहता है, मैं पीछे हटूंगा और 7 पढ़ूंगा, आइए हम आनंदित हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेहने का विवाह आ गया है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे बढ़िया मलमल, उज्ज्वल और स्वच्छ दिया गया है उसे पहनने के लिए। दुल्हन चर्च भगवान के महिमामंडित लोगों की एक छवि या प्रतीक है, और अब उन्हें पहनने के लिए लिनेन या चमकदार सफेद लिनेन दिया जाता है। तो यह वादा अब सर्दीस में चर्च से किए गए वादे में उठाया गया है कि अगर वे जीत हासिल करते हैं, यानी अगर वे समझौता करने से इनकार करते हैं, तो वे भी सफेद वस्त्र पहनेंगे। परिधान शायद केवल उनके अंतिम उद्धार और पूर्णता का प्रतीक हैं, और अधिक विशेष रूप से जीत और यहां तक की पुष्टि का प्रतीक हैं। अब क्योंकि वे रोमन साम्राज्य के हाथों पीड़ित हुए हैं, उन्होंने शत्रुतापूर्ण माहौल में भी वफादार गवाही बनाए रखी है, यहां तक कि मृत्यु के बिंदु तक उन्हें अपनी जीत और अपनी पवित्रता के प्रतीक के रूप में सफेद वस्त्र प्राप्त होंगे कि अब वे उनके अंतिम उद्धार के साथ साथ पुष्टि भी प्राप्त करें। तो यह प्रकाशित वाक्य के बाद के खंडों में उनसे किया गया पहला वादा है। उन्हें पवित्रता, पुष्टि और विजय का सफेद वस्त्र प्राप्त होगा। दूसरा, उनके नाम जीवन की पुस्तक में भी होंगे, लेकिन आश्वासन यह है कि उन नामों को मिटाया नहीं जाएगा। जब आप रहस्योद्घाटन की शेष पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको अध्याय 5 से शुरू होने वाली कई पुस्तकों या स्क्रॉल से परिचित कराया जाएगा और यहाँ हमें जीवन की पुस्तक नामक पुस्तक से परिचित कराया जाता है। शायद फिर से यह एक शाब्दिक पुस्तक नहीं है लेकिन एक ऐसी पुस्तक जो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा और स्वयं परमेश्वर से संबंधित होने का प्रतीक है। यह पुस्तक उनके उद्धार का प्रतीक है। यह पुस्तक उनके उद्धार की निश्चितता का प्रतीक है जो अब उनके पास है। दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने उनसे कहा है कि उनका नाम मिटाया नहीं जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह संभव है कि इस किताब से उनका नाम मिटा दिया जाए? यानी यह अंदर हो सकता है लेकिन इसे बाहर निकाला जा सकता है। यह पूरी तरह से संभव है लेकिन इस पाठ पर इतना जोर नहीं दिया गया है कि यह अधर में लटक जाए। क्या उनके नाम वापस लिए जाएंगे या नहीं? आपके नामों की यह भाषा मिटाई नहीं जाएगी। यह भाषण का एक अलंकार है जिसे लिटोटेस कहा जाता है, जो किसी बात को उसके विपरीत या उसके नकारात्मक पर जोर देकर कहने का एक तरीका है। तो कोई कह सकता है, आप कैसे हैं? और आप उत्तर दे सकते हैं, बुरा नहीं। इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप इसके विपरीत कहते हैं। इसलिए किसी का नाम उजागर न करना विपरीत बात बताने का एक तरीका है। भगवान तुम्हें रखेंगे। यदि आप विजय प्राप्त करते हैं और दृढ़ रहते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप अपने युगांतिक मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो सर्दीस के चर्च के लिए और वैसे जीवन की पुस्तक जो हम देखेंगे वह बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिखाई देती है। तो फिर से जॉन अपने चर्चों के लिए वर्तमान पर काबू पाने के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए शेष पुस्तक में अंतिम युगांत संबंधी मुक्ति की छवियों को चित्रित कर रहा है। इसलिए सर्दीस के चर्च के लिए वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को एक बार फिर अन्य चर्चों की तरह एक चेतावनी के रूप में बुतपरस्त रोमन साम्राज्य की मूर्ति पूजा प्रथाओं में भाग न लेने या उसका हिस्सा न बनने की चेतावनी के रूप में पढ़ेंगे। उसके साथ समझौता करें और समायोजित करें, ऐसा न हो कि वे स्वयं न्याय के दर्शन और उन विपत्तियों और न्याय के दर्शन का पात्र बने जो ईश्वर रोम और एक दुष्ट ईश्वर विहीन दुनिया पर डालता है यदि वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय फिर से उन लोगों के लिए जो अपनी पवित्रता बनाए रखते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी वफादार गवाही बनाए रखते हैं, तो उनके पास वादा है कि वे युगांतकारी मोक्ष में भाग लेंगे जो भगवान ने अपने लोगों के लिए वादा किया है, यानी सफेद वस्त्र और विजयी होना और पुष्टि की जा रही है, और यह निश्चितता भी है कि उन्हें भविष्य में युगांतकारी मोक्ष विरासत में मिलेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारा अगला चर्च अध्याय 3 श्लोक 7 से 13 में फिलाडेल्फिया का चर्च है। फिलाडेल्फिया शहर फिर से इस गोलाकार मार्ग पर एक प्राचीन शहर था। यह पिछले शहर सार्डिस से थोड़ा दक्षिण पूर्व में रहा होगा जिसे हमने देखा था। 17 में आए भूकंप से सर्दीस के साथ साथ यह भी तबाह हो गया था। यह शहर में सम्राट पंथ और अन्य बुतपरस्त देवताओं और धर्मों के प्रभाव के कारण भी महत्वपूर्ण था। और फिलाडेल्फिया के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मिर्ना के साथ यह एकमात्र अन्य चर्च है जिसे सकारात्मक मूल्यांकन मिलता है और इसमें कोई फटकार या निंदा शामिल नहीं है। स्मिर्ना की तरह यह एक चर्च है जो पीड़ित है क्योंकि इसने अपना वफादार गवाह बनाए रखा है। इसलिए जब यीशु फिलाडेल्फिया में चर्च को संबोधित करते हैं तो वह यही कहते हैं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि ये उसके वचन हैं जो पवित्र और सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। मैं तुम्हारे कर्म जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुझ में शक्ति थोड़ी है, तो भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो शैतान के सभागृह में से हैं और जो यहूदी होने का दावा करते हैं, यद्यपि वे नहीं हैं, परंतु झूठे हैं, मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि आकर तेरे पांवों पर गिरें और मान लें कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। चूंकि तूने धैर्यपूर्वक धीरज धरने की मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परीक्षा करने के लिए सारे जगत पर आने वाला है। मैं जल्द आ रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो ताकि कोई तुम्हारा मुकुट न छीन ले। जो जय पाए उसके लिए मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, वह इसे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम लिखूंगा, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतर रहा है, और मैं उस पर अपना नया नाम भी लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हमने फिलाडेल्फिया कहा, जैसे ही हम उन शब्दों को पढ़ते हैं, फिलाडेल्फिया को निंदा या नकारात्मक मूल्यांकन नहीं मिलता है, लेकिन मूल्यांकन सकारात्मक होता है। समस्या यह है कि चर्च को कम शक्ति वाला बताया गया है। संभवतः इसका मतलब यह है कि फिलाडेल्फिया शहर में उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत कम है, वे कम महत्व के चर्च हैं। शायद वे खुद को उस उत्पीड़न से बचाने में असमर्थ हैं जो उन्हें मिल रहा है, लेकिन वे अपने जीवन और अपनी गवाही में वफादार बने हुए हैं। इसलिए उस शीर्षक पर ध्यान दे जो अध्याय एक में मसीह को दिया गया है। अध्याय तीन में फिलाडेल्फिया में चर्च को संदेश यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो पवित्र और सच्चा है और उसके पास डेविड की चाबियां हैं, अर्थात जो अब उन्हें पवित्र कहकर संबोधित करता है, वह विश्वासयोग्य है और दाऊद की कुंजियां भी उसी के पास है। दिलचस्प बात यह है कि यह पुराने नियम का एक और संकेत है। मुझे लगता है कि इसे समझने की कुंजी और खुले दरवाजे को समझने की कुंजी है। बाद में यीशु फिलाडेल्फियन चर्च से कहते हैं, मैंने आपके सामने एक खुला दरवाजा रखा है। इसे समझने की कुंजी पुराने नियम की पृष्ठभूमि को समझना है, जो एक बार फिर यशायाह की पुस्तक और अध्याय 22 से सामने आती है। यशायाह अध्याय 22 में हम इसराइल के राजा एलियाकिम को संबोधित इन शब्दों को पढ़ते हैं, जो कि है दाऊद के वंश में सिंहासन पर बैठा राजा। अध्याय 22 में मैं श्लोक 20 से शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यशायाह 22 के श्लोक 24 को पढ़ने जा रहा हूँ। उस दिन मैं हिल्कियाह के पुत्र अपने सेवक एलियाकीम को बुलाऊंगा और उसे तेरा वस्त्र पहनाऊंगा। उसे बागा पहनाओ और अपना कमरबंद बांधो। दिलचस्प बात यह है कि अध्याय एक में जिस तरह से यीशु का वर्णन किया गया है उसके समानांतर और अपना अधिकार उसे सौंप दें। वह यरूशलेम और यहूदा के घराने में रहने वालों का पिता ठहरेगा, और मैं चाहता हूं कि आप पिता की उस भाषा पर ध्यान दें। मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। वह जो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो वह बंद कर देता है उसे कोई नहीं खोल सकता। वह श्लोक 22 था। तब 23 में उसे खूंटी की नाई दृढ़ स्थान में हांकूंगा। वह अपने पिता के घराने के लिए सम्मान का बीज ठहरेगा। उसके परिवार की सारी प्रतिष्ठा उस पर टिकी रहेगी। यह संतान और शाखा है। उस पर फिर से ध्यान दें, संतान या बीज की वह भाषा। इसके अलावा पुराने नियम और डेविडिक वाचा में भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कटोरे से लेकर सभी जार तक इसके सभी छोटे बर्तन। इसका संदर्भ यह है कि एलियाकिम राजा के रूप में जो डेविड के सिंहासन पर बैठता है उसे अब डेविड का अधिकार दिया गया है, और अब उसे राज्य में प्रवेश या महल में प्रवेश की चाबियां दी गई हैं। उसे चित्रित किया गया है और एलियाकिम को लगभग एक प्रशासक के रूप में चित्रित किया गया है। और महल में प्रवेश या बहिष्कार की अनुमति कौन दे सकता है? और दाऊद के साम्राज्य में? और सवाल यह है कि फिर यह मसीह पर कैसे लागू होता है? एलियाकिम के संदर्भ में यशायाह अध्याय 22 जैसा विशिष्ट पाठ अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर कैसे लागू होता है? सबसे पहले हम डेविड के साथ संबंध को पहले ही कई बार नोट कर चुके हैं। अक्सर उन लोगों के बारे में क्या सच था जो डेविडिक सिंहासन पर बैठे थे? यह कई तथाकथित शाही भजनों के बारे में सच है जो बाद में नए नियम में यीशु पर लागू किए गए हैं। जो बात अक्सर दाऊद के सिंहासन पर बैठे लोगों के बारे में सच थी, वही बात दाऊद के बड़े बेटे यीशु मसीह के बारे में भी सच थी। तो तब यीशु को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जिसके पास कुंजियां और अधिकार हैं। कुंजियां राज्य में प्रवेश या बहिष्करण के अधिकार का प्रतीक हैं। दाऊद के साम्राज्य से जिसका उद्घाटन अब यीशु ने किया है, इसलिए यीशु दाऊद के सच्चे पुत्र के रूप में अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने या बाहर करने का अधिकार है। और दाऊद के राज्य से जिसका उसने अब उद्घाटन किया है। इसके अलावा यह संभव है कि यशायाह अध्याय 22 को भी यशायाह अध्याय 9:06 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। आपको वह प्रसिद्ध पाठ याद है जिसे हम अक्सर क्रिसमस के समय पढ़ते हैं, अध्याय 9:06 से आरंभ। हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, हमें एक बेटा दिया गया है और सरकार उसके कंधों पर होगी। वह भाषा जो यशायाह अध्याय 22 में प्रकट होती है, और उसे अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता कहा जाएगा, जो कि अध्याय 22 में एलियाकिम पर लागू किया गया शब्द है। शांति का राजकुमार, उसकी सरकार और शांति की वृद्धि का कोई अंत नहीं होगा। वह दाऊद की गद्दी पर और उसके राज्य पर राज्य करेगा। इस समय से और उस समय से लेकर सर्वदा तक इसे न्याय और धार्मिकता के साथ स्थापित करना और कायम रखना। अब यशायाह अध्याय 22 को संभवतः जॉन ने अध्याय 9 के आलोक में पढ़ा होगा। यह दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए एक पुत्र का आगमन है, ताकि वह सदैव अपना शासन स्थापित करे और धर्म से राज्य करे। सरकार उनके कंधों पर होगी। तो अब यीशु मसीह यशायाह अध्याय 9 का पुत्र है। फिर वह दाऊद के राजा के रूप में अध्याय 22 का अधिकार भी लेता है, अपने राज्य में शामिल करने, प्रवेश देने या प्रवेश से बाहर करने का अधिकार। चाबियां अधिकार किसके पास है? दूसरा कारण संभवतः यशायाह अध्याय 22 में है। जॉन ने एलियाकिम को टाइपोलॉजिकल रूप से पढ़ा होगा, विशिष्ट रूप से एक बड़े बेटे की आशा करना, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में साथ आने वाले किसी व्यक्ति की चरम अभिव्यक्ति प्रदान करेगा, और वे कुंजियां ले जो डेविडिक साम्राज्य में समावेशन और बहिष्करण के अधिकार को दर्शाती हों। इसलिए एलियाकिम को संभवतः आने वाले बड़े बेटे का एक प्रकार या एक मॉडल या पैटर्न प्रदान करने के रूप में समझा जा सकता है। फिर यदि हम यशायाह के अध्याय 22 को अध्याय 9 के प्रकाश में पढ़ते हैं तो इसे और भी अधिक पुष्टि मिलती है। और फिर अंत में यशायाह अध्याय 22:23 में दिलचस्प रूप से ध्यान दें। अध्याय 22 में हम पाते हैं कि श्लोक 23 में एलियाकिम की तुलना एक खूंटी से की गई है। मैं उसे खूंटी की तरह दृढ़ स्थान पर हाँक दूंगा। लेकिन पद 25 में बाद में ध्यान दीजिए, सर्वशक्तिमान प्रभु की यह वाणी है कि उस दिन दृढ़ स्थान में गाड़ी गई खूंटी टूट जाएगी, इसे काट दिया जाएगा। यह लगभग वैसा ही है जैसे यह उस समय की आशा करता है जब उस खूंटी को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए और उस खूंटी को वापस उसकी पक्की जगह पर गाड़ देना चाहिए। उम्मीद है कि भविष्य में कोई उसे पूरा करने आएगा। तो ये सभी चीजें दी गईं। विशेष रूप से यशायाह 9 के प्रकाश में मसीह और डेविड के बीच संबंध, यशायाह 22 में एलियाकिम और यीशु मसीह के बीच प्रतीकात्मक संबंध, और फिर 22 के संदर्भ में भी इस खूंटी का टूटना। लगभग अनुमान था कि यह खूंटी पुनः स्थापित हो जाएगी। तो फिर मुझे लगता है कि यह सब न केवल यशायाह 9 बल्कि अब यशायाह अध्याय 22 की अंतिम पूर्ति के रूप में मसीह की पहचान करने की ओर ले जाता है। वह मसीह अब डेविड के अंतिम पुत्र के रूप में आता है, जो अब चाबियां लेता है और उसके पास परमेश्वर के राज्य में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है। वह अब स्थापित हो चुका है, जो बाद में अध्याय 20 और अगले अध्याय में महत्वपूर्ण हो जाएगा, जब यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने के लिए आते हैं। वह अंततः एक नई रचना में प्रकाशित होता है। मसीह वह है जिसके पास अपने राज्य में प्रवेश से शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है। हालांकि दिलचस्प बात यह है, अध्याय 1 और श्लोक 8 में यीशु को राज्य की चाबियां नहीं होने के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन मृत्यु और अधोलोक की कुंजी के रूप में। और अब अध्याय 3 में मसीह ही वह है जिसके पास परमेश्वर के राज्य की कुंजियां हैं। दूसरे शब्दों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंध है। मसीह ने मृत्यु और अधोलोक पर विजय प्राप्त की। वह साधन है जिसके द्वारा मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश प्रदान करता है। लेकिन फिर उन लोगों के लिए जो इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वह बहिष्कृत करता है। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के अंत में देखते हैं, वे दूसरी मृत्यु भोगते हैं और वे आग की झील में समा गए। हम उन छवियों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यह मसीह है जो मृत्यु और अधोलोक पर विजय प्राप्त कर रहा है। वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश प्रदान करके ऐसा करता है, और उसके पास ऐसा करने की चाबियां और अधिकार हैं, लेकिन इसे उन लोगों से बंद कर देता है जो स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और जो तौबा करने से इनकार करते हैं, लेकिन उस चर्च के लिए जो फिलाडेल्फिया में पीड़ित है। यह छवि अच्छी खबर होगी कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह स्वयं मसीह हैं। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां किसके पास हैं? और अब राज्य की चाबियां किसके पास हैं? और उन्हें प्रवेश प्रदान करता है। तो मुझे लगता है कि हमें श्लोक 8 को इसी तरह समझना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में और श्लोक 8 में फिलाडेल्फिया में चर्च को संदेश में यीशु यह कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्म जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है। वह खुला दरवाजा क्या है? परंपरागत रूप से यही समझा जाता रहा है, विशेष रूप से लोकप्रिय हलकों में इंजीलवाद के संदर्भ के रूप में। उसने उन्हें गवाही का खुला द्वार दिया है, उसने उन्हें सुसमाचार प्रचार का खुला द्वार दिया है। हालांकि श्लोक 7 के प्रकाश में, यशायाह 22 के साथ संबंध के प्रकाश में, मसीह के पास अधिकार के प्रतीक के रूप में कुंजियां हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की अनुमति देना या प्रवेश को बाहर करना, मसीहा साम्राज्य। यहां खुला दरवाजा सुसमाचार प्रचार के लिए अवसर का दरवाजा नहीं है। खुला दरवाजा ईश्वर के राज्य में प्रवेश है, और इसलिए अब यीशु उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। उनके पास एक खुला दरवाजा है, और वह है जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। वह व्यक्ति है जिसके पास विशेष रूप से वे चाबियां हैं जो प्रवेश की अनुमति देती हैं। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मसीहाई साम्राज्य में प्रवेश की अनुमति देता है। मृत्यु और नरक पर विजय प्राप्त करके और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से, और अब उन्होंने फिलाडेल्फिया वासियों को एक खुला दरवाजा दे दिया है। तो चाहे कुछ भी हो, उन्हें कष्ट होता है, चाहे वे कितने ही महत्वहीन क्यों न लगें, चाहे वे अपनी स्थिति में कितने भी शक्तिहीन क्यों न हों, उन्हें पहले ही मसीहा साम्राज्य में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। दाऊद के पुत्र राजा के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की अनुमति देने वाली चाबियां किसके पास हैं? उसके द्वारा जो अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान से गुजर चुका है, मृत्यु और पाताल लोक की शक्ति पर विजय प्राप्त की। फिलाडेल्फिया की चर्च के लिए इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू श्लोक 9 में पाया जाता है, अर्थात श्लोक 9 में वह कहते हैं, मैं तुम में से उन लोगों को जो शैतान के आराधनालय में से हो बनाऊंगा। पहले के कुछ चर्चों को याद करें, वह भी उन लोगों के साथ संघर्ष किया। जो दिलचस्प बात यह है कि वहां दूसरा चर्च स्मिरना का चर्च है, उसे सकारात्मक मूल्यांकन मिलता है। अब इसी तरह फिलाडेल्फियाई लोग पीड़ित होते दिख रहे हैं या कुछ हद तक उत्पीड़न प्राप्त कर रहा है। फिलाडेल्फिया शहर में यहूदी आबादी के कारण हमें शायद इसे उसी तरह समझना था जैसे हमने पहले समझा था, अर्थात यह अत्यधिक संभव है कि यहूदियों को सुरक्षा प्राप्त थी रोमन शासन के तहत एक धर्म के रूप में, इस नए धर्म से दूरी बनाने को आतुर थे जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं। कुछ विशेषकर स्थानीय अधिकारी, जैसा कि हमने कहा, अब तक उत्पीड़न साम्राज्यव्यापी नहीं था और आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई, लेकिन स्थानीय स्तर पर ऐसे कई लोग रहे होंगे जिन्होंने ईसाइयों को विध्वंसक के रूप में देखा होगा और समायोजित करने से इनकार कर रहा है, जैसा कि अनुरूप होने से इनकार कर दिया जा रहा है, और इस तरह से व्यवहार करना जिससे कृतज्ञता की कमी दिखे देवताओं की ओर और रोम की ओर, और यहूदी स्वयं को अन्य ईसाइयों से दूर रखने के लिए रोमन शासन के तहत अपने विशेषाधिकारों को संरक्षित करने के इच्छुक रहे होंगे, और इसलिए यहां संदर्भ को उस तरह से लिया जा सकता है जो यहूदी होने का दावा करते हैं लेकिन वे वास्तव में नहीं हैं, अर्थात वे परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं लेकिन वे वास्तव में नहीं हैं। इस तथ्य के कारण कि वे वास्तव में फिलाडेल्फिया शहर में रहने वाले ईसाइयों को सताते हैं और उनकी बदनामी करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके बारे में क्या कहा जाता है। जॉन वास्तव में कहते हैं, मैं उन्हें बनाऊंगा। यही वे यहूदी हैं जो दावा करते हैं कि वे यहूदी हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं हैं। मैं उन्हें आकर स्वीकार कराऊंगा कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। यह वास्तव में यशायाह की पुस्तक से फिर से लिया गया है। कई ग्रंथ कभी कभी यशायाह अध्याय 45 और श्लोक 14 लिखते हैं, यशायाह 49 और श्लोक 23, यशायाह अध्याय 60 और श्लोक 14। यह विचार यह है कि राष्ट्र इसराइल में आएंगे और झुककर उन्हें स्वीकार करो और स्वीकार करें कि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जॉन ने इसे उलट दिया है और वह कहते हैं कि वास्तव में यह सिर्फ वे राष्ट्र नहीं होंगे जो आएंगे और इसराइल जाति को दंडवत करो और स्वीकार करें कि वे परमेश्वर के लोग हैं। अब ये यहूदी जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते हैं आकर परमेश्वर के लोगों को दंडवत करेंगे फिलाडेल्फिया में चर्च, और स्वीकार करें कि ईश्वर उनसे प्रेम करता है। इसलिए जॉन इस पाठ का उपयोग लगभग व्यंग्यात्मक ढंग से करता है। फिर से फिलाडेल्फिया वासियों को आश्वस्त करने के लिए, इतना ही नहीं बल्कि उन्हें मसीहा साम्राज्य में भी प्रवेश मिला, क्योंकि मसीह के पास कुंजियां हैं। लेकिन एक दिन जो उन पर अत्याचार करते हैं, भविष्य में यहूदी आराधनालय के लोग भी झुककर स्वीकार करेंगे कि वे सचमुच परमेश्वर के लोग हैं। यीशु ने फिलाडेल्फियाई चर्च को जो वादा दिया था वह दोहरा था। श्लोक 10 से शुरू करते हुए, सबसे पहले यीशु ने वादा किया कि यदि वे जीत गए और फिर फिलाडेल्फियाई चर्च पर विजय पाने के लिए, इसका मतलब है कि उनके पास पहले से मौजूद अपनी वफादार गवाही को बनाए रखना है। यदि वे पद 10 पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझौता करने से इनकार कर दें। मसीह ने वादा किया है कि वह उन्हें परीक्षा की घड़ी से दूर रखेगा, संभवतः परीक्षण का वह समय जिसे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और पद 21 में अधिक विस्तार से देखेंगे। इसका तात्पर्य संभवतः तब है। मेरी राय में इस पर काफी बहस चल रही है। इसमें क्या शामिल है? कि उन्हें मुकदमे की घड़ी से दूर रखा जाएगा। जॉन संभवतः उन्हें शारीरिक रूप से उससे हटाने पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब भी उतना ही हो सकता है। वह ईश्वर बस उन्हें रखेगा और उनकी रक्षा करेगा, वो भी ट्रायल के बीच में और जो आने वाला है उसके बीच में भी। रहस्योद्घाटन के बाकी हिस्सों में भगवान उनकी रक्षा करेंगे, जिससे वे भाग नहीं लेंगे। हाँ, चर्च को अनिवार्य रूप से उत्पीड़न से सुरक्षा का वादा नहीं किया गया है, और विशेषकर रोमन साम्राज्य के हाथों, परंतु जब परमेश्वर अपना न्याय सुनाता है, यह पाठ वादा करता है कि भगवान उन्हें बनाए रखेंगे। इसके बीच में परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। दूसरा, लेखक फिर सीधे प्रकाशित वाक्य 21 और 22 की ओर अपील करता है, मंदिर और न्यू जेरूसलम दोनों की कल्पना के साथ। ध्यान दे, वह वादा करता है कि वे भगवान के मंदिर में एक स्तंभ होंगे, और उन्होंने यह भी वादा किया कि वे नए यरूशलम में भाग लेंगे। वह स्वर्ग से आता है। वे दोनों छवियां सीधे प्रकाशित वाक्य 21 और 22 से आती हैं। प्रकाशित वाक्य 21 में जॉन नए यरूशलेम का वर्णन करता है जो स्वर्ग से निकलता है, स्वर्ग से नीचे आता है, परमेश्वर के लोगों द्वारा निवास किया जाना और विरासत में प्राप्त होना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह स्तंभ कल्पना है, भगवान के मंदिर में एक स्तंभ की छवि अध्याय 21 और 22 के साथ भी प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि वहां नए यरूशलेम को केवल एक शहर के रूप में चित्रित नहीं किया गया है, इसे स्पष्ट रूप से एक मंदिर के रूप में भी चित्रित किया गया है। न्यू जेरूसलम केवल अंतिम समय का शहर नहीं है, यह अंत समय का मंदिर है। तो भगवान के मंदिर में एक स्तंभ की छवि का उपयोग करके, फिर मैं दाहिनी ओर मुड़ा और न्यू जेरूसलम की भाषा का प्रयोग किया। जॉन भी यही कह रहा है, क्योंकि वे परमेश्वर के नए यरूशलेम के टुकड़े टुकड़े मंदिर के उत्तराधिकारी होंगे। यह दिलचस्प भी है। मुझे आश्चर्य है कि खंभा किस हद तक महल के खूंटे को भी प्रतिबिंबित कर सकता है। यशाया अध्याय 22 से एलियाकीम के मंदिर में, और अब उनसे वादा किया गया है कि वे इसमें भाग लेंगे। फिर से कहने का एक और तरीका, जब मसीह इसे पुनर्स्थापित करने के लिए आएंगे तो वे मंदिर में भगवान के अंतिम राज्य में भाग लेंगे और अपने लोगों के लिए युगांतकारी मुक्ति लाना। हम यहां किसी चीज की प्रत्याशा भी देखते हैं। हम प्रकाशित वाक्य में अन्य स्थानों पर देखेंगे और हम इसे नए नियम में अन्यत्र पाते हैं, जैसे कि इफिसियों 2 और 1 कुरिन्थियों 3, जहां मंदिर की कल्पना स्वयं लोगों पर लागू की जाती है, अर्थात पुनर्निर्मित मंदिर को समझा नहीं जा सकता भौतिक संरचना की दृष्टि से, लेकिन खुद लोगों के संदर्भ में। लोग अब भगवान के सच्चे मंदिर हैं और अन्य नए नियम के ग्रंथों के साथ फिर से सुसंगत। तो फिलाडेल्फिया का चर्च प्रकाशित वाक्य की शेष पुस्तक पढ़ेगा। नंबर 1 के रूप में वे विपत्तियों से सुरक्षित रहते हैं और उस न्याय से जो परमेश्वर पृथ्वी पर डालता है उससे उनकी रक्षा होगी और वे वादा किया हुआ उद्धार प्राप्त करेंगे उनके वफादार गवाह के कारण और उनके धैर्य के कारण। तो यह हमें अंतिम चर्च में लाता है, लौदीकिया का चर्च अध्याय 3 श्लोक 14 से 22 तक। यह आखिरी चर्च इस वृत्ताकार मार्ग के अंत में स्थित है। यह फिलाडेल्फिया शहर से लगभग 45 मील या इसके आसपास है। इसके दक्षिण पूर्व, जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, यह संभवतः 7 चर्चों में से किसी के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाले संदेशों में से एक है। अध्याय 2 और 3 में, और हम देखेंगे क्यों। लाओदिसिया एक चर्च है जो भूकंप से नष्ट हो गया था। यह वास्तव में लगभग 60 ही पू में एक भूकंप से नष्ट हो गया था। इस प्रकार जॉन अब इस चर्च को संबोधित कर रहे हैं उस समय से केवल 30 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन शहर का पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रोम की मदद से नहीं, लेकिन अपने ही अमीर नागरिकों से, अपने ही नागरिकों और निवासियों की संपत्ति से उन्होंने पुनर्निर्माण किया। उन्होंने शहर के पुनर्निर्माण के लिए धन दिया। लौदीकिया शहर के बारे में क्या प्रसिद्ध है? कम से कम एक कारक जो इस पत्र के दूसरे भाग में काम आएगा, या मुझे लौदीकिया की कलीसिया के लिए इस संदेश पर खेद है। लौदीकिया शहर में किसी भी प्राचीन शहर की एक प्रसिद्ध आवश्यकता का अभाव था, और वह अच्छी जल आपूर्ति थी। किसी शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं और मानदंडों में से एक, यह केवल एक ऐसी जगह नहीं थी जिसे संरक्षित किया जा सके। लेकिन इसमें पानी की आपूर्ति भी होनी चाहिए, और यह उन चीजों में से एक है जिनकी लौदीकिया में कमी थी। वास्तव में जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं, आप जल सेतु प्रणाली की तस्वीरें भी देख सकते हैं। लौदीकिया को अपना पानी कहीं और से एक जल सेतु के माध्यम से पाइप द्वारा प्राप्त होता था। इसके अलावा लौदीकिया कई विदेशी और बुतपरस्त देवताओं की पूजा का केंद्र था, और फिर लौदीकिया शहर में सम्राट पंथ भी प्रभावशाली था, और इसलिए यीशु लौदीकिया शहर से यही कहते हैं, या लौदीकिया के नगर के चर्च में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिखो। ये आमीन के शब्द हैं। वफादार और सच्चा गवाह, ईश्वर की सृष्टि का शासक, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न गर्म है न ठंडा। मेरी इच्छा है कि आप या तो गर्म या ठंडे होते, इसलिए क्योंकि आप गुनगुने हैं, मुझे लगता है कि मुझसे कुछ चूक हुई है। आप न तो गर्म हैं और न ही ठंडे, काश आप या तो एक होते या दूसरे, क्योंकि आप गुनगुने होते हैं। न गर्म न ठंडा, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने वाला हूं। आप कहते हैं मैं अमीर हूं, मैंने धन संपत्ति अर्जित कर ली है और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम अभागे, दयनीय, गरीब, अंधे और नंगे हो। मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि मेरे लिए आग में तपाया हुआ सोना मोल लो, तो आप अमीर बन सकते हैं और पहनने के लिए सफेद कपड़े पहन सकते हैं, इसलिए आप अपनी शर्मनाक नग्नता को ढक सकते हैं और अपनी आंखों पर मरहम लगाओ ताकि तुम देख सको। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें डांटता और अनुशासित करता हूँ, इसलिए गंभीर बनो और पश्चाताप करो। मैं यहाँ हूँ, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक देता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुन ले और दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं विजयी हुआ और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालांकि अध्याय 2 और 3 में कुछ चर्चों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मूल्यांकन प्राप्त होते हैं, लौडिसिया का मूल्यांकन पूरी तरह से नकारात्मक है। मसीह कुछ भी अच्छा नहीं कहते, जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम कहां हो और मैं आपकी वफादारी के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं, और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे पास यह आपके खिलाफ है। इसके बजाय चर्च का संपूर्ण मूल्यांकन नकारात्मक है। मसीह के पास लौदीकिया की कलीसिया के बारे में कहने को कुछ भी अच्छा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है, कोई कष्ट नहीं है। इसके बजाय समस्या ज्ञान की पूर्ण कमी प्रतीत होती है और चर्च की भयानक आध्यात्मिक स्थिति, उनकी शालीनता और उनके धन द्वारा लाए गए समझौते के कारण। यह रोचक है, ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु बुतपरस्त पूजा के साथ उनके समझौते के बारे में कुछ नहीं कहते हैं और सम्राट पूजा में शामिल होना, हालांकि यह निहित हो सकता है, लेकिन इसके बजाय मसीह उनकी पूरी संतुष्टि के पीछे चला जाता है, अर्थात वे अपनी स्थिति में अपने स्वयं के धन और आराम पर बहुत अधिक निर्भर हैं कि उनके पास कोई गवाह ही नहीं है। वास्तव में धन की भाषा पर ध्यान दे, जब यीशु उन्हें आग से परिष्कृत सोना खरीदने के लिए कहते हैं ताकि आप वास्तव में अमीर बन सकें। यह एक तरह से व्यंग्य की भाषा है, अर्थात यीशु उनकी भौतिक संपत्ति और उनकी भौतिक स्थिति को धिक्कारते हैं और कहता है कि वास्तव में तुम इसलिए निर्धन हो क्योंकि तुम्हारे पास सच्चे धन का अभाव है। आपके पास सच्चे धन का अभाव है जो आध्यात्मिक है, और शायद वह सोने की भाषा और उदाहरण के लिए आंख की मलहम की भाषा। लौदीकिया शहर, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अपनी संपत्ति के लिए जाना जाता था। इस तरह 60 ईस्वी में आए भूकंप के बाद इसने खुद को फिर से बनाया, लेकिन यह भी तथ्य यह है कि संदर्भ आंख की मरहम का है। यह इस तथ्य को प्रतिबिंबित कर सकता है कि लौडिसिया में एक मेडिकल स्कूल था जो आंखों की मरहम बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अब जॉन इसका प्रयोग व्यंग्यात्मक ढंग से यह कहने के लिए करता है कि आप आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं। आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के विपरीत आप वास्तव में गरीब हैं, और आपके मेडिकल सेंटर की प्रतिष्ठा और आंखों की मरहम के विपरीत आप वास्तव में आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। इसलिए वह उन्हें उन चीजों को प्राप्त करने की सलाह देता है जो वास्तव में आध्यात्मिक धन को बढ़ावा देती हैं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। अध्याय 1 की छवि जो मसीह पर लागू होती है, उन्हें आमीन और वफादार गवाह के रूप में देखा जाता है, जो वही चीज है जो लौदीकिया में नहीं थी। वे वफादार गवाह नहीं थे, इसके बजाय यीशु मसीह को सारी सृष्टि के शासक के रूप में चित्रित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसी कोई अपने पड़ोसी में पाता है। एक पड़ोसी चर्च को संबोधित कुलुस्सियों अध्याय एक श्लोक 15 और 20 में कुलुस्से की चर्च। मसीह चर्च का शासक है, यानी चर्च पर उसका अधिकार है। वह उनके जीवन पर अधिकार की स्थिति में है और उनकी संपत्ति और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसलिए चर्च की स्थिति यद्यपि भौतिक संपदा वाली है और एक समृद्ध वातावरण में, आध्यात्मिक रूप से इससे अत्यधिक आत्मसंतोष पैदा हुआ है और पूर्ण आध्यात्मिक अप्रभाविता। कोई यह भी कह सकता है कि पूर्ण आध्यात्मिक मृत्यु। मुझे लगता है कि इससे हमें श्लोक 13 और 6 से 16 तक यीशु के शब्दों को समझने में मदद मिलती है, साथ ही लाओडिसियन समुदाय की पृष्ठभूमि के बारे में हम जो जानते हैं उसका उपयोग करना। मुझे लगता है कि यह सब हमें श्लोक 13 से 16 में यीशु के शब्दों को समझने में मदद करता है। वह यह है कि वह न तो गर्म और न ही ठंडा होने के कारण चर्च की निंदा करता है, लेकिन इसके बजाय गुनगुना होना। अब परंपरागत रूप से हमने इसका अर्थ समझ लिया है। खैर, लौदीकिया में चर्च। लौदीकिया की कलीसिया ठंडी है, अर्थात गुनगुना को गर्म और ठंडे के मध्य या आधे भाग में समझना है। हम गर्म और ठंडे को द्व्याधारी विपरीत मानते हैं, बीच में गुनगुने के साथ, और आमतौर पर हम उनकी बराबरी करते हैं। हम गर्म, गुनगुने और ठंडे को आध्यात्मिक तापमान के समान मानते हैं। मसीह के लिए आग में जलना कितना गर्म होगा और प्रभावी और साक्षी होना, ठंड इसके विपरीत होगी। बंद कर दिया जाना और मृत हो जाना और सुसमाचार के प्रति बिल्कुल अनुत्तरदायी। गुनगुना बीच में है, यह एक तरह से अप्रतिबद्ध है, यह इच्छापूर्ण है, यह आधा अधूरा है, यह एक तरह से बाढ़ पर चढ़ने जैसा है। मसीह के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, लेकिन उसे अस्वीकार भी नहीं करना चाहता। लेकिन ईसाई धर्म सड़क के मध्य में एक प्रकार की इच्छापूर्ण धोबी भरी चीज है। आमतौर पर इस रूपक को इसी तरह समझा जाता है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं और कई अन्य लोगों का अनुसरण करें जो सुझाव देते हैं कि यह वह नहीं है जो जॉन के मन में था। और इसे समझने का तरीका, लौदीकिया वासियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आलोक में इसे पढ़ना महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही कहा था, लौदीकिया की दिलचस्प विशेषताओं में से एक, इसमें किसी शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक का अभाव था, और वह है एक विस्तृत जल सेतु की प्रणाली के माध्यम से अच्छी जल आपूर्ति करना। इसका पानी कहीं और से पाइप द्वारा लाया गया था। अब इसके साथ ही दूसरी बात पहचानने वाली है, लौदीकिया के क्षेत्र में दो अन्य शहर लौदीकिया के बहुत करीब, वास्तव में वे अपनी जल आपूर्ति के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक हियरापोलिस नाम का शहर था, यह अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता था। वह औषधीय प्रयोजनों के लिए लाभदायक था। इन झरनों में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अगर आपने कभी इनकी तस्वीरें देखी हैं, यह थोड़ा सा दिखता है। आप में से जो लोग कभी येलोस्टोन पार्क गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में विशाल गर्म झरने और सभी बुदबुदाते गर्म झरने, हियरापोलिस लौदीसिया से अधिक दूर नहीं है। यह अपनी गर्म पानी की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध था, और फिर लोग हर तरफ आएंगे उनके औषधीय और उपचारात्मक महत्व के लिए। दूसरा नगर कुलुस्से भी लौदीकिया के निकट था, यह अपनी जल आपूर्ति के लिए भी जाना जाता था, यह अपने ठंडे और ताजा पानी के लिए जाना जाता था। वह पीने में अच्छा था और इसलिए आपके पास लौदीकिया है। दो शहरों से घिरा हुआ, हियरापोलिस और कोलोसे अपनी जल आपूर्ति के लिए जाने जाते हैं। गर्म पानी की आपूर्ति के लिए एक ठंडे ताजा पानी की आपूर्ति के लिए। लेकिन इसके बजाय लौदीकिया, इसके पानी को पाइप से अंदर डालना होगा और जब तक यह वहां पहुंचेगा, यह गुनगुना है, यह बासी है, यह गुनगुना है, यह हियरापोलिस के गर्म पानी जैसा नहीं है, यह उपचार के लिए अच्छा है, यह कोलोसे के ठंडे ताजा पानी की तरह नहीं है, वह पीने के लिए अच्छा है और ताजगी इसके बजाय यह गुनगुना है, यह किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, वास्तव में यह बहुत विचित्र है। वह मसीह कहता है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, और आप इसके बारे में सोचें, गुनगुना पानी किसी को पसंद नहीं होता से बेहतर सादृश्य, आध्यात्मिक तापमान से बेहतर सादृश्य। मुझे लगता है कि जब आप किसी रेस्तरां में जाएंगे तो ऐसा ही होगा। वेटर या वेट्रेस आपका कॉफी कप क्यों भरता रहता है? आपका गर्म कॉफी कप, क्योंकि गुनगुनी कॉफी किसी को पसंद नहीं होती। या वे क्यों आते रहते हैं और आपका पानी का गिलास भरते रहते हैं? क्योंकि गुनगुनाया गुनगुना बासी पानी किसी को पसंद नहीं होता। हमें यह ताजा पसंद है। उसी प्रकार यीशु लौदीकिया की कलीसिया को बुला रहा है। काश आप हॉट होते, हियरापोलिस के गर्म पानी की तरह यह उपचार के लिए अच्छा है। या काश तुम ठंडे होते, कुलुस्से के ठंडे ताजा पानी की तरह। जॉन के लिए ठंडा और गर्म दोनों सकारात्मक चीजें हैं। और उसके पाठकों के लिए, काश आप भी अपने पड़ोसी शहरों की तरह होते। किसके पास अच्छा पानी था? गर्म और ठंडे, वे किसी चीज के लिए अच्छे हैं। इसके बजाय आप अपनी स्वयं की जल आपूर्ति की तरह हैं। यह गुनगुना है, यह बहुत घृणित और घृणित है, यह किसी काम के लिए अच्छा नहीं है और यह बहुत घृणित है। मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने वाला हूं। इसलिए गुनगुना का मतलब इच्छाधारी मध्यमार्गी ईसाई धर्म नहीं है। इसका मतलब मृत अप्रभावी बेकार ईसाइयों से है। वे अपने धन और अपनी स्थिति में इतने आत्मसंतुष्ट हो गए हैं कि वे पूरी तरह से बेकार हैं और यीशु मसीह के व्यक्तित्व के लिए पूरी तरह से अप्रभावी गवाह। समाधान तो फिर भी स्पष्ट नहीं है। वह है पश्चाताप करना और सच्चा धन पाना, सच्ची दृष्टि पाना और सच्चा वस्त्र पाना। फिर परिधानों की भाषा भी, सफेद वस्त्र पहनना, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य में कहा है। विजय विजय और पवित्रता का प्रतीक है। यह लौदीकिया शहर के वाणिज्य को भी प्रतिबिंबित कर सकता है। लेकिन जॉन का समाधान पश्चाताप करना है। उनके पास अपनी आध्यात्मिक मृत्यु से बाहर निकलने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। उनकी आध्यात्मिक निरर्थकता, उनकी आध्यात्मिक गरीबी, अंधापन और अशुद्धता। और इसके बजाय पश्चाताप करें और भगवान के वफादार गवाहों के रूप में कार्य करें। अंतिम निर्देश के रूप में 3:20 पर ध्यान दें। चर्च को एक अंतिम निर्देश, अध्याय 3:20 देखें, जो प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। मुझे लगता है कि यह अक्सर फिर से थोड़ा गलत पढ़ा जाता है, क्योंकि हम यह समझने में असफल हो जाते हैं कि यह लौदीकिया के पूरे संदेश में कैसे फिट बैठता है। अध्याय 3:20 में ईसा स्वयं का वर्णन इस प्रकार करते हैं, वह कहता है, मैं यहाँ हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक देता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुन ले और दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वह व्यक्ति मेरे साथ भोजन करेगा। अक्सर हमने इस कविता को अधिक व्यक्तिगत रूप से पढ़ा है, मुक्ति के लिए एक व्यक्तिवादी आह्वान के रूप में। और मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह कल्पना इसका उपयुक्त विवरण प्रदान कर सकती है, लेकिन जॉन उस बारे में बात नहीं कर रहा है। जॉन व्यक्तिगत मुक्ति के आह्वान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ईसा मसीह खड़े हैं, हमारे दिलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अंदर आना चाहते हैं। हालांकि यह सच हो सकता है, यहां की तस्वीर अधिक कपटपूर्ण है। ईसा मसीह को उनके चर्च के बाहर खड़े देखा जाता है। इसमें स्वागत नहीं है। लौदीकिया चर्च इतना आत्मसंतुष्ट और अप्रभावी हो गया है। यह अपने धन और समाज में स्थिति पर बहुत निर्भर है और उसका परिवेश। यीशु मसीह का अब उसके चर्च में स्वागत नहीं है और अपने चर्च के बाहर खड़ा है। दरवाजा खोलना ही एकमात्र उपाय है और उसे वापस अंदर आकर भोजन साझा करने की अनुमति दें। शायद यह इस तथ्य का संदर्भ है कि चर्च ने दावतें मनाई हैं। समय सहित शायद प्रेम भोज का संदर्भ या ऐसा ही कुछ, और समय जो लगभग और भी अधिक विडंबनापूर्ण है। यदि यह चर्च द्वारा दावत मनाने का संदर्भ है और एक साथ एकता का जश्न मना रहे हैं, तब यीशु मसीह अचानक उसमें से छूट गए और उससे बाहर रखा गया, और अब वह अपने चर्च में वापस स्वागत करने के लिए कह रहा है और फिर से अपने चर्च के केंद्र में उपस्थित होना। वह जो दीवटों के चारों ओर फिरता है, वह अब अपने चर्च के केंद्र में भी रहने के लिए कह रहा है। तो लाओडिसियन चर्च के लिए, उन्हें समझौता करना बंद कर देना चाहिए। उन्हें अपनी आत्मसंतोष की भावना को रोकना होगा और उनके धन पर निर्भरता में आराम और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, और इसके बजाय उन्हें मसीह को जाने देना चाहिए, सृष्टि का शासक, वफादार गवाह। उनके बीच आओ और वापस उनके चर्च के केंद्र में, और फिर उन्हें भी मसीह का वफादार गवाह बनना चाहिए। चाहे परिणाम कुछ भी हो, उस वादे पर भी ध्यान दें जो उन्हें दिया गया है। यदि वे सफल हो जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो विजय प्राप्त करता है, मैं अपने साथ अपनी गद्दी पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे ही मैंने विजय प्राप्त की। दूसरे शब्दों में, यदि लौदीकिया के लोग पश्चाताप करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे पश्चाताप करके ही विजयी होते हैं। समझौता करने से इनकार, आत्मसंतुष्टि का जीवन जीना बंद करके, मसीह को उनके बीच में वापस आने की अनुमति देकर, मसीह के वफादार गवाह बनकर, मान लीजिए कि वे इस तरह से उबर गए, मसीह ने वादा किया है कि वे उसके साथ शासन करेंगे। यह दिलचस्प है कि उनका यह वादा कुछ मायनों में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। आपको आश्चर्य है कि यह वास्तव में उनकी स्थिति पर कैसे फिट बैठता है। खैर, एक अर्थ में आप देख सकते हैं, उन्हें राज करने का वचन देकर, यह उनकी आध्यात्मिक स्तब्धता से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर, मुझे आश्चर्य है कि शायद यह वादा जानबूझकर किया गया है। एक सामान्य वादे से अधिक, हमें अध्याय 4 और 5 के लिए तैयार करने के लिए। अध्याय 4 और 5 में हम ईश्वर और मेन्ने को पाते हैं। सिंहासन पर बैठाया और स्वर्ग में शासन कर रहे हैं। और उनकी संप्रभुता को पूरे स्वर्ग ने स्वीकार किया है और सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा है। और अब उसकी तैयारी में लौदीकिया का चर्च, संभवतः अन्य चर्चों को भी इसमें भागीदारी का वादा किया गया है। यदि वे सफल हो जाते हैं तो शायद यह अधिक सामान्य बात है। एक सामान्य वादा लौदीकिया की कलीसिया को आगे आने वाले विजन की तैयारी में 4 और 5 में, जहां भगवान और मेमना अपने सिंहासन पर हैं, केंद्र में हैं, तो लौदीकिया के लोगों के लिए वे प्रकाशित वाक्य की शेष पुस्तक पढ़ेंगे। निर्णय की एक कठोर चेतावनी के रूप में वे बाकी विपत्तियों को पढ़ेंगे और यदि वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं तो रहस्योद्घाटन में भगवान के फैसले उन पर पड़ते हैं। वे प्रकाशित वाक्य की शेष पुस्तक पढ़ेंगे, उन्हें उनकी शालीनता से बाहर निकालने के लिए एक प्रयास के रूप में और उन्हें सच्ची दौलत पाने के लिए प्रेरित करना और सच्चा दर्शन और सच्ची पवित्रता, यह केवल यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्यता से आता है। और मसीह के लिए वफादार गवाह, चाहे कीमत कुछ भी हो, तो इस बिंदु पर सबसे पहले हमने मसीह को अपने चर्चों में स्थिति का निदान करते देखा है। उनमें से केवल 2 ही पीड़ा सहने तक वफादार रहे हैं। उनकी वफादारी के लिए दूसरों के पास है, उनमें से अधिकांश के पास कुछ है, कुछ तो उन्होंने सही किया है, लेकिन उनमें से अधिकांश को प्राप्त होता है बल्कि एक नकारात्मक मूल्यांकन। उनमें से अधिकांश में कुछ न कुछ कमी है। वह मसीह ध्यान आकर्षित करता है और उनमें से एक लाओडिसियन चर्च को पूरी तरह से नकारात्मक मूल्यांकन प्राप्त होता है। इन सभी के साथ समस्या कुछ हद तक समझौता है और बुतपरस्त रोमन वातावरण के साथ आवास, वह मूर्ति पूजा है, बुतपरस्त देवताओं की पूजा, सम्राट पूजा में शामिल होना, अक्सर अपने व्यावसायिक जीवन के सिलसिले में कठिनाई उससे अलग होने से इनकार करने की है। उनमें से कुछ लोग उत्पीड़न और बहिष्कृत होने से बचने के लिए समझौता करने को तैयार हो सकते हैं, शायद नौकरियां भी छूट जाएंगी। हो सकता है कि अन्य लोग इतने आत्मसंतुष्ट रहे हों कि उन्हें जगाने की जरूरत है और समझकर चौंक गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और वे क्या कर रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश कुछ हद तक समझौतावादी थे बुतपरस्त रोमन साम्राज्य के साथ और बुतपरस्त समाज जिसमें उन्होंने खुद को पाया। तो अध्याय 2 और 3 फिर विभिन्न स्थितियों पर बात करें। वह पहली सदी का चर्च था और मैं आज चर्च को जोड़ूंगा और हर दूसरी सदी में खुद को पाता है, सिर्फ उत्पीड़न नहीं। और मैं कम से कम आज कई चर्चों के लिए कहूंगा, विशेषकर पश्चिम में, शायद ही कभी उत्पीड़न होता है जो उनके सामने आने वाली मुख्य समस्या है। दूसरा, फिर हम अध्याय 2 और 3 देखते हैं। प्रत्येक चर्च कैसे निर्धारित करेगा, प्रकाशित वाक्य की शेष पुस्तक पढ़े या शेष रहस्योद्घाटन कैसे प्रत्येक चर्च पर विशेष रूप से लागू करें। और फिर अंत हमने कह दिया अध्याय 4 से 22 तक पुनर्व्याख्या करेंगे एक प्रतीकात्मक से सर्वनाशकारी दृष्टिकोण से। अध्याय 4 से 22 तक दूरदर्शी दृष्टिकोण से करेंगे व्याख्या करें कि जॉन ने वास्तव में क्या कहा है। अध्याय 2 और 3 में आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं यह वह वाक्यांश है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया है और वह अंत में है। वादों के साथ साथ, कभी कभी पहले भी, कभी कभी ठीक बाद, साथ ही वादा भी हमारे पास संदेश है। वह जिसके पास कान हो उसे सुनने दो कि आत्मा कलीसियाओं के बारे में क्या कहता है। वह अध्याय 2 और 3 के साथ है। हमें आध्यात्मिक विवेक की आवश्यकता महसूस होती है, यह देखने के लिए कि चर्चों में क्या गलत है। चर्चों के लिए एकमात्र रास्ता अपनी स्थिति से जागना ही चर्चों के लिए अपनी वफादार गवाही बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। उत्पीड़न के बावजूद भी चर्च के लिए अपनी शालीनता को समझने का एकमात्र तरीका इसका समझौता और इसका आध्यात्मिक अंधापन, इसे अपना वफादार गवाह बनाए रखने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि रखने से है। चर्च की स्थिति में और अध्याय 2 और 3 वह अंतर्दृष्टि प्रदान करें जो आवश्यक है चर्च के लिए, विशेषकर वे चर्च जो समझौता करते हैं, जागृत करने के लिए और उनकी स्थिति को समझें और पहचानना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का शेष भाग क्या है? भगवान के लोगों से कहते हैं, यह बस पुष्ट करता है। वह अध्याय 4 से 22 तक, इसका मतलब केवल भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है और हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, हमें पता लगाने में मदद करने के लिए भविष्य में क्या होने वाला है और हम कहाँ हैं, किसी समय रेखा में हमारे अस्तित्व को दर्शाने के लिए। इससे पता चलता है कि हम अंत के कितने करीब हैं। इसके बजाय प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से 24 तक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। इसके लिए समझ और आत्माओं की नजर की आवश्यकता होती है। 7 गुना आत्मा हमें समझने और समझने में मदद करने के लिए चर्च की वास्तविक स्थिति और क्या दाव पर लगा है और भगवान को अपने चर्च से क्या चाहिए, यदि उन्हें आज्ञाकारिता में उसका उत्तर देना है और यदि उन्हें अपनी वफादार गवाही कायम रखनी है शत्रुतापूर्ण बुतपरस्त माहौल में और उस साक्षी को कायम रखना है। चाहे कीमत कुछ भी हो, 7 चर्चों को भेजे गए संदेशों को देखने के बाद अध्याय 2 और 3 में अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और पढ़ना शुरू करें और विचार करना शुरू करें। दूरदर्शी एक प्रकार का सर्वनाशकारी भाग अध्याय 4 से 22 तक। तो मैं जो प्रस्ताव करता हूं वह यह है कि हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। हम 4 से 22 अध्याय तक आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 और 5 से शुरू करते हैं। आरंभिक बिंदु में प्रवेश बिंदु को क्रमबद्ध करें। जॉन के दृष्टिकोण का हम समग्र रूप से विजन के मुख्य कार्य को देखेंगे और हम यह भी पूछेंगे कि अध्याय 2 और 3 में चर्चों की स्थिति से इसका क्या संबंध हो सकता है। लेकिन समग्र कार्य और उसके संदर्भ को देखें, लेकिन फिर कुछ विवरण भी देखें और विशेष रूप से कुछ अधिक महत्वपूर्ण या दिलचस्प या समस्याग्रस्त विवरण भाषा प्रतीकों और छवियों के रूप में। और इसलिए ऐसा करते हुए हम जो दृष्टि पाते हैं उसके विभिन्न वर्गों और भागों के मुख्य कार्य और उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। पुस्तक के शेष भाग में यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर डॉक्टर डेव मैथ्यूसन का पाठ्यक्रम है। यह 7 है, रहस्योद्घाटन के साथ चर्च सार्डिस फिलाडेल्फिया और लॉडिसिया।